दत्तस्य सिद्धनम् मामृदत्तस्य सिद्धनम् मामृदत्तस्य सिद्धनम्
मुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ईशावास्य उपनिषद अगले क्लास में हमने वेदांत क्या है, वेदांत दर्शन क्या है, उसका प्रारंभिक चिंतन किया। ईशावास्योपनिषद के ऊपर हमने एक टैगलाइन लिखा है, आपको याद है जय भाई क्या लिखा है? अस्तित्व का उत्सव ईशावास्योपनिषद। अस्तित्व का उत्सव ये जो पूरा अस्तित्व है, ये अस्तित्व का एक उत्सव है। किस प्रकार का? एग्जिस्टेंस वॉन्ट्स टू मेक अवर लाइफ फेस्टिवल बिकॉज व्हेन वी आर अनहैप्पी वी स्कैटर्ड अनहैप्पीनेस ऑल अराउंड अस। सृष्टि का जो अस्तित्व है वही एक इच्छा करता है कि हमारा जीवन पूरा उत्सव बने। क्यों? क्योंकि जब हम प्रसन्न मुद्रा में है तो हम अपने आजू बाजू हमेशा प्रसन्नता पॉजिटिविटी देंगे और चिंता मग्न व्यक्ति हमेशा अपने आसपास क्या देगा? नेगेटिविटी। ये जो अस्तित्व है, सृष्टि है, उसका एक धर्म है। हमारे पूज्य गुरुजी हमें अक्सर कहते हैं कि सृष्टि का एक धर्म है सतत विकसना, खिलना। आज हम जगत जो देख रहे हैं कल इनसे कहीं विशेष होगा, परसों इनसे कहीं विशेष होगा। अखंड सृष्टि, ऐसा नहीं कि सृष्टि की रचना की गई या हो गई। सृष्टि एक ऐसी सतत प्रक्रिया है कि सृष्टि अखंड हो रही है। हो गई ऐसा नहीं, अखंड हो रही है। इसलिए जो ये अस्तित्व है उनका धर्म ही है सतत विकसना, सतत खिलना। और यदि हम विकसित रहेंगे, खिलते रहेंगे, आनंद की भूमिका में रहेंगे तो सृष्टि के साथ हम संवादित रहेंगे। किंतु ये जो संवादितता है ये कैसे प्राप्त हो? संवादितता मीन्स क्या? संवाद एक लय, लीनता है, उसके साथ मिल जाना, यही तो संवाद है। एक बार सृष्टि के साथ हमें संवादितता प्राप्त हो गई, बाद में हमें कुछ नहीं करना है। जो कुछ करेगी ये सृष्टि करेंगी, सृष्टि के अंतर्यामी परमात्मा करेंगे। प्रश्न क्या है कि हम उनसे अलग हो गए हैं, और इसीलिए हमारा जो ये वेदांत दर्शन है और शास्त्र मात्र है उपनिषद से लेके सभी, तो उनका एक ही प्रयोजन है कि जीव को अपने अस्तित्व के मूल आधार के साथ जोड़ना। और यही जो बुद्धि है उसको प्रज्ञा बोलते हैं। बुद्धि से जो हम निर्णय करते हैं वो निर्णय दो प्रकार के हैं, दो प्रकार के सत्य है। एक है व्यावहारिक सत्य और दूसरा है पारमार्थिक सत्य। व्यावहारिक सत्य मीन्स कि हमारी जो बुद्धि है, हमारी जो विचार क्षमता है, उसके आधार पर ये जगत में देश, काल, क्रिया, वस्तु, व्यक्ति के आधार पर हम जो देख रहे हैं और उनके आधार पर हम जो निर्णय कर रहे हैं, ये व्यावहारिक सत्य है, परमानेंट सत्य नहीं है, किंतु हमारे सामने है इसलिए हम उसे देख पा रहे हैं, इंद्रियों से उनका संयोग होता है इसलिए हम अनुमान कर पा रहे हैं, इंद्रियों के द्वारा विषय भोग के माध्यम से हम ये अस्तित्व के साथ जुड़ते हैं, तो ये सब जो सत्य है वो व्यावहारिक सत्य है। हमारे शास्त्र वेदांत उपनिषद कहते हैं कि केवल यही पूर्ण नहीं है जो आंख से दिखता है, ये व्यावहारिक सत्य से परे भी कुछ है जिन्हें हम देख नहीं पाते। देख नहीं पाते मीन्स विशुद्धया बुद्धया, एक शुद्ध सात्विक ऐसी पवित्र बुद्धि से तो उनको ग्रहण कर पाते हैं, किंतु भौतिक और लौकिक बुद्धि से यह पारमार्थिक सत्य को ग्रहण करना यह बहुत कठिन है। और ये जो पारमार्थिक तत्व है, अणु अणु में जो निहित है, जिनको हम स्थूल और विषयान्मुख आंखों से और इंद्रियों से नहीं देख पा रहे हैं, उनको हमने हमारे उपनिषदों ने ऋत कहा, ऋत। ऋतम भरा प्रज्ञा, ऋतम भरा तत्र ऋतम भरा प्रज्ञा, पतंजलि ऋषि ने योग सूत्र में बताया कि ये जो हमें नजर में जगत दिखाई पड़ता है उनके भीतर भी कोई तत्व निहित है जिनको ऋत शब्द से कहा जाता है, वही ऋत का साक्षात्कार कर सके वही सच्ची प्रज्ञा है। भौतिक रूप से यह सब तो हम देख पा रहे हैं, किंतु इसके अंदर जो निहित है हमें वहां पहुंचना है। जैसे हम क्या देखते हैं कि मैंने उनको ये दिया तो उसके बदले में उन्होंने मुझे ये दिया। हमारा व्यवहारिक जगत केवल इतना है, और खास करके आज के जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट के जो क्लासेस है, और ज्यादातर क्या सिखाया जाता है कि ऐसी पर्सनालिटी रखो, अच्छे दिखो, अच्छे कपड़े पहनो, अपने चेहरे पर मुस्कान रखो, ऐसे शब्दों का प्रयोग करो। केवल भौतिकता में सब कुछ नहीं है, उनके भीतर भी कुछ है, भावनात्मक विश्व है। कि कहीं चीजें ऐसी है कि आप मुख से नहीं बोलते तो भी सामने वाला व्यक्ति समझ जाता है। ये क्या है? ये भावना है। तो हम जो व्यवहार रूप से देखते हैं उनसे भी सूक्ष्म कुछ है भावनात्मक। जैसे कभी प्रयोग करना, आप स्ट्रीट पे चलते हैं और सामने से कोई कुत्ता आता है तो हाथ पीछे रखना और हाथ में पत्थर रख के निकलना और मन में सोचना कि थोड़ा नजदीक एक कुत्ता आए तो ये पत्थर उनके सिर पे ऐसे मारूंगा। आपके नजदीक आने से पहले ही वो कुत्ता अपना मार्ग बदल देगा। और वही हाथ में पीछे रोटी रख के आप चलेंगे और मन में भावना करेंगे कि इनमें भी यही ये भी एक चैतन्य है, ईश्वर का अंश है, थोड़ा नजदीक आने पर मैं उन्हें ये रोटी खिलाऊंगा और बिस्किट खिलाऊंगा, ऐसा कोई शुभ संकल्प करते करते हम उनके नजदीक जाएंगे तो क्या होगा, दूर से ही वो अपनी दूम हिलाना प्रारंभ कर देगा। एक दृष्टि से हम सोचते हैं कि उन्हें कैसे पता चल गया, तो ये सबके भीतर सबके अंदर अंतर्निहित कोई एक चेतना है, वही चेतना के माध्यम से ये पूरा विश्व कनेक्टेड है। जैसे मानो आज हम आमने सामने बैठे हैं, भौतिक रूप से तो कहीं दूर दूर सब बैठे हैं, तो भी आज हम एक दूसरे को देख पाते हैं, एक दूसरे को सुन पाते हैं, वार्तालाप कर पाते हैं। मतलब क्या है कि भौतिक दूरी तो है, भौतिक हमारे आंखों की इंद्रियों की इतनी क्षमता नहीं है कि यहां बैठे बैठे हम बड़ौदा में बैठे जय भाई को देख सके, ऐसी तो संभावना है नहीं। फिर भी एक तरंगायित एक दुनिया है और उनके माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से उनका उपयोग करके हम एक दूसरे को देख पाते हैं, एक दूसरे को सुन पाते हैं। हमारे सौराष्ट्र में एक शब्द है, भूत प्रेत को वश करने वाला, उनको बोलते हैं भुआ। उसका हिंदी में तो कुछ नहीं कह सकते। और दूसरे भी ये प्रेत आदि की साधना करते हैं तो वो जहां जाते हैं उनको यही दिखाई पड़ता है कि यहाँ ऐसी आत्माओं का वास है, यहाँ इनकी छाएं है, इसको दूर कैसे किया जाए। देखो हमें कुछ नहीं दिखाई पड़ता है, किंतु उनको ये प्रेतमय जो विश्व है वो दिखाई पड़ता है, भावनात्मक विश्व है, ऐसा विश्व, ऐसा तो अनंत प्रकार का ये विश्व है। इसलिए ये सृष्टि इतनी चमत्कारी है और इतनी रहस्यमयी है कि उनका पार कोई नहीं ले सकता। इसलिए बार बार ये अध्यात्म तत्व की जिज्ञासा में हमारे ऋषियों ने मूल में पहुंचने का बहुत प्रयास किया। जैसे बृहदारण्यक उपनिषद में श्वेत केतु ने, श्वेत केतु को अपने उनके पिता उद्दालक ने प्रश्न पूछा कि बेटे यही बता दो ये कौन सा तत्व है कि एकेन विघ्नातेन सर्व विघ्नातम भवति, कि एक को जानने लेने से सब सबका ज्ञान हो जाए, ऐसा कोई तत्व तुम्हें पता है? आज आधुनिक विज्ञापन होते हैं, एडवर्टाइजमेंट, तो उनमें क्या बोलते हैं, 2-in-1, 3-in-1, मोबाइल है तो आप अनेक प्रकार के प्रकल्पों का उपयोग मोबाइल के माध्यम से कर सकते हैं। आपको टॉर्च की जरूरत नहीं, आपको अलार्म की जरूरत नहीं, स्टॉप वॉच की जरूरत नहीं, ऐसे तो कई प्रकार से हम एक ही इंस्ट्रूमेंट से कई प्रकार के उपयोग कर सकते हैं। तो हमारे ऋषि मुनियों ने शुद्ध सत्व भाव में निहित रह के वन में जाके पूरे भौतिक विषयों का त्याग करके यही विषय पे चिंतन किया। और ये सब त्याग क्यों किया? क्योंकि शुद्ध सत्व भाव बिना ये बहुत तरल जो अध्यात्म तत्व है वो ग्रहण में नहीं आ सकता। तो उनके लिए सब कुछ छोड़ने के लिए हमारे ऋषि मुनि तैयार हो गए कि बस हमें वो तत्व चाहिए। जैसे बृहदारण्यक में एक कथा आती है कि याज्ञवल्क ऋषि, उनके पास लाखों गैया थी और सब कुछ उन्होंने दान कर दिया। प्राचीन समय में तो गाय वो ही पूर्ण वैभव कहलाती थी। तो उनकी पत्नी गार्गी ने उनको पूछा कि ऐसा तो क्या हुआ आपको कि आप सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार हो गए? जैसे हमारे पास तो ऐसी भौतिक रूप से कहे जाए तो अरबों खरबों की संपत्ति नहीं है, तो थोड़ा बहुत है कुछ, उनको छोड़ने से पूरा इतना नहीं होता, किंतु अरबों खरबों की संपत्ति है और उनको छोड़ेंगे तो उनको बड़ा त्याग बोलेंगे। त्याग तो त्याग है, छोड़ देना मतलब छोड़ देना, किंतु हमारा त्याग और भर्तृहरि का त्याग, बाजंद राजा का, भरत जी का त्याग, वो छोटा बड़ा त्याग क्यों कहलाता है? त्याग तो त्याग ही है, किंतु उन्होंने ज्यादा छोड़ा तो बोल सकते हैं कि बड़ा त्याग किया। तो जैसे याज्ञवल्क्य ऋषि ने सब कुछ छोड़ दिया, तो गार्गी ने प्रश्न पूछा। हमारे उपनिषद में देखो, ये गार्गी एक स्त्री के देह में, किंतु वो ब्रह्मवादी नहीं हो गई। तो उनको प्रश्न पूछा कि ये सब आपने क्यों छोड़ दिया? तब याज्ञवल्क्य ऋषि ने बहुत अच्छा उत्तर दिया कि ये जो तत्व है जिनके लिए मैं ये सब छोड़ रहा हूं, जो तत्व मुझे मिलता है उनके सामने मेरा या मेरा यह त्याग तो कुछ भी नहीं है। वो इतनी बड़ी वस्तु है कि इनके लिए मेरा ये त्याग कोई मायने नहीं रखता। और इसीलिए ऋषि मुनियों ने सब कुछ छोड़ दिया, जंगल में चले गए, कंद फल खाने लगे और सत्व भाव में रहकर यही चिंतन करते रहे, यही चिंतन, और सूक्ष्म से सूक्ष्म में जाने लगे और कोई कारण तक पहुंच पाए। तो यही जो सब में निहित पारमार्थिक कोई तत्व है, सत्य है, वो जड़ में, वो मूल में पहुंच जाना, यही परम श्रेय का एक श्रेष्ठ पुरुषार्थ है। और उनको ग्रहण करने, वो जो रुत तत्व है उनको ग्रहण कर सके ऐसी बुद्धि, उनको प्रज्ञा बोलते हैं, ऋतम भरा प्रज्ञा। जैसे भगवद गीता में उनको दिव्य दृष्टि बोलते हैं कि जब भगवान ने युद्ध भूमि के बीच शोक मग्न, चिंता मग्न, अपने कर्तव्य से विमुख और विमूढ़ चेतस वाले अर्जुन को जब भगवान ने विश्व रूप दिखाया, तो भगवान ने तो पूरा विश्व रूप दिखा दिया, किंतु अर्जुन वो भगवान के स्वरूप को देखने को समर्थ नहीं हुए। हाथ जोड़ के भगवान को विनंती करने लगे कि प्रभु मैं तो कुछ नहीं देख पा रहा हूं, क्योंकि मेरी तो यह चर्म चक्षु है, आपका यह दिव्य रूप मैं कैसे ग्रहण कर पाऊ? तब भगवान ने उन्हें कहा कि हे अर्जुन, ददानिते दिव्य चक्षु हो, तो मैं तुझे आज दिव्य चक्षु देता हूं और यही चक्षु के माध्यम से तुम मेरे पूर्ण स्वरूप का साक्षात्कार कर पाओगे। और भगवान ने अर्जुन को दिव्य चक्षु दिया और यही चक्षु से अर्जुन भगवान का रूप देने के लिए योग्य हुए, पात्र हुए। तो वैसे ही ये तत्व को हमें पाना है, तुम्हें क्या करना है? हमारे जीवन में सद्गुरु की भूमिका क्या है? ऋषि भगत आप बोलेंगे, जीवन में सद्गुरु की भूमिका क्या है?
मार्गदर्शन।
मार्गदर्शन, आप क्या बोलते हैं जय भाई? सदगुरु नाम किम, गुरु की भूमिका क्या है? यही भूमिका है कि हमारी ये जो चर्म चक्षु है उनको दिव्य बना देना, हमारी दृष्टि बदल देना। सृष्टि तो वही की वही है और वही की वही रहेंगी, किंतु एक बार सृष्टि के पर प्रति हमारी जो दृष्टि बदल गई, कहावत है ना, दृष्टि ऐसी सृष्टि। दीदार करना है तो नजर पैदा कर, ऐसा कुछ सुना था। तो जैसे हमारी नजर बदलेंगी तो वही नजर बदलने के साथ पूरे नजारे बदल जाएंगे। तो सदगुरु क्या करते हैं जीवन में, बस हमारी ये जो नजर है ना उनको ही बदलते हैं। एक बार नजर बदल गई तो वही नजर से हम सब कुछ अच्छी तरह से देख पाएंगे। अज्ञान तिमिरान धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितम येन तस्मै श्री गुरवे नमः। और इसलिए हमारे शास्त्र गुरु की महिमा गाते वक्त सबसे अच्छा सबसे ज्यादा पहले क्या गाते हैं, तो क्या अज्ञान तिमिरान धस्य ज्ञानांजन शलाकया। अज्ञान रूपी तिमीर से वो इतना घट तिमीर मानो कि अंधकार हो गया है कि हम कुछ देख नहीं पा रहे हैं। और अंधकार के वचनामृत में भगवान स्वामी नारायण ने ऐसा कहा कि जैसे कोई कक्ष है और वो कक्ष में कोई प्रवेश करता है किंतु वहां प्रवेश नहीं प्रकाश नहीं है तो इधर उधर अथड़ाता रहेगा। ये जगत में ये सृष्टि में आने के बाद ये जो क्लेश है अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश और ये पंच क्लेशों के कारण इधर उधर अथड़ाते रहते हैं, सुख दुख होता रहता है, उनका सबका मूल है तो ये अंधेरा। और कैसा अंधेरा, तो कि अज्ञानमय अंधेरा है। सदगुरु की यही भूमिका है कि हमें अज्ञान से ज्ञान की ओर ले जाते हैं। और ज्ञान रूपी शलाका से अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया, जैसे मूर्ति प्रतिष्ठा की विधि होती है तो उनमें क्या होता है कि हाथ में शलाका, शलाका मानो कि एक स्टिक है, वो विशेष प्रकार के एक घास की पवित्र घास की वो स्टिक बनाई जाती है और वो मधु है हनी उनमें भिगोकर प्रतिष्ठा के मंत्र के माध्यम से आचार्य और गुरु होते हैं। वो जो मूर्ति है मूर्ति की आंख में उनको अंजन करते हैं। और ऐसा कहा जाता है कि जब आंख में अंजन करते हैं तो वो ही अंजन के माध्यम से वो चक्षु में प्राण आते हैं और भगवान की प्रतिष्ठा होती है। तो सदगुरु ज्ञानांजन शलाकया, हाथ में शलाका लेके ज्ञान रूपी अंजन, अंजन काजल आंख में काजल करते हैं। काजल क्यों करते हैं, अच्छा दिखने के लिए, शीतलता के लिए, आंख की शीतलता के लिए। तो ज्ञान रूपी अंजन जब सदगुरु करते हैं तो वही आंख से आज तक हम देख रहे थे वो अलग था और अब अलग रहेगा। आज तक का हमारे जगत के प्रति, जीवन के प्रति, समाज के प्रति, वस्तु के प्रति, प्रत्येक व्यक्ति के प्रति, सफलता और निष्फलताओं के प्रति हमारी जो सोच थी, हमारा जो रवैया था सोचने का करने का, वही सब कुछ बदल जाता है। नजर बदलने मात्र से सब नजारे बदल जाते हैं। तो यही दृष्टि भगवान ने अर्जुन को दी कि ददानी ते दिव्य चक्षु हो, ये अर्जुन मैं तुम्हें दिव्य चक्षु देता हूं और यही दृष्टि से तू मेरे पूर्ण स्वरूप का साक्षात्कार कर पाएगा। तो ये जो पूरा अस्तित्व है, ये अस्तित्व उनका धर्म ही है, सतत खिलना सतत विकसना। एक बार हम ये अस्तित्व के साथ जुड़ जाए तो जैसे अस्तित्व सतत खिलता है, अस्तित्व में जैसे प्रत्येक क्षण उत्सव चलता है, वैसा उत्सव वैसा आनंद वैसा विकास हमारे जीवन में भी हम प्रतिक्षण देख पाएंगे। जैसे एक श्वेता श्वतर उपनिषद है, उनकी एक श्रुति है, यदा सह उदरम अंतरम कुरुते तस्य एव भयम् भवति। ये पूरा उपनिषद के ऊपर ही चिंतन है तो हमें भी थोड़ी अलग अनुभूति हो रही है किंतु आपकी कृपा से थोड़ा अलग प्रकार का अभ्यास, बहुत आनंद आएगा। यदा सह उदरम अंतरम कुरुते तस्य एव भयम् भवति। यदा यदा नाम जब, when सह नाम वो, अब तो संस्कृत पढ़ रहे हैं तो आपको पता चल जाएगा, सह तौ ते, सह नाम एक वचन में, सह नाम वो कौन, नाम के स्थान पर उपयुक्त किया जाए उनको बोलते हैं सर्वनाम। जैसे कोई व्यक्ति का नाम बोलते हैं, जय इज लिसनिंग, बाद में हम बोलेंगे कि ही इज वेल लिसनर, तो ही है वो सर्वनाम है। तो यदा प्रकरण से कोई भक्त का, प्रकरण से कोई एक धीर पुरुष का, एक आर्ष पुरुष का प्रकरण चल रहा है, तो यदा सह नाम उपासक उदरम अंतरम कुरुते, अल्पम अंतरम कुरुते नाम, कि अपना जो संबंध है ये अस्तित्व के आधारभूत जो ब्रह्म तत्व है, ये उपनिषद से हमें क्या करना है, तो ये कौन है उनका परिचय करना है। जैसे एक उपनिषद तो ईशावास्य के बाद हम शायद भगवान की कृपा होंगी और जिंदा हो गए तो एक उपनिषद ले गए, दूसरा उपनिषद है कैन उपनिषद। तो ये उपनिषद का मूल विषय ही यही है, कैन, ये सब करने वाला कौन है, उनके ऊपर ही ये पूरा विषय उपनिषद है। तो यदा सह नाम उपासक उदरम अंतरम कुरुते, ये अल्प उदर नाम संबंध विच्छेद अपने आधार के अस्तित्व के स्रोत से करता है, तो क्या होता है, तो कि तस्य एव भयम् भवति, सब प्रकार के भय उनके ऊपर लागू हो जाते हैं। जैसे एक वृक्ष जो पृथ्वी के साथ जुड़ा है, एक बार उनको मूल से उखाड़ दे, वृक्ष तो नहीं उखाड़ सकते किंतु छोटा छोड़ एग्जाम्पल के तौर पे हम ले, तो एक छोटे से छोड़ को हम मूल के साथ जमीन से जुदा कर दे तो सब प्रकार के भय उनके ऊपर लागू पड़ जाएंगे। वही सूर्य प्रकाश जो उनको पोषण देने वाला था, वही सूर्य प्रकाश उनको सुखाने लगेगा, सब प्रकार के भय लागू पड़ जाएंगे। क्यों? क्योंकि अपने अस्तित्व के आधार से वो जुदा अलग हो गया। तो यदा सब प्रकार के क्लेश हमारे जीवन में आते हैं, चिंता आती है, मुश्किली आती है, और वही आध्यात्मिक आधि भौतिक और आधि दैविक जो प्रवृत्तियां है, ये जो सृष्टि है वो हमें अनेक प्रकार से क्लेश देती है, दुख देती है, वो सबका कोई कारण है, तो वो कारण है हमारे अस्तित्व के आधार से मूल से हमारा अलग होना। जब तक ये छोड़ भूमि के साथ जुड़ा रहेगा तब तक उन्हें कोई बात का भय नहीं है। देखो कि पृथ्वी उनको पानी देगी, उनको सभी प्रकार का पोषण देगी, सृष्टि उनको बारिश के द्वारा वर्षाद, सूर्य प्रकाश उन्हें एनर्जी देगा, सब एक छोटा सा बीज बोया उनकी पुष्टि के लिए सब जुड़ जाएंगे। कब तक? जब तक वो अपने अस्तित्व के आधार के साथ जुड़ा रहेगा। यदा सह उदरम अंतरम कुरुते तस्य एव भयम् भवति, अल्पसा बीज संबंध विच्छेद हुआ तो सभी प्रकार के भय लागू होने लगेंगे। और इसीलिए रामायण में एक चौपाई है, हनुमान जी विभीषण को मिलने के लिए लंका में गए, तो विभीषण की परिस्थिति देखी कि असुर कुल में, असुर नगरी में एक भक्त प्रभु राम का भजन कर रहा है, तो हनुमान जी को मिलके विभीषण को भी बहुत आनंद आया। और विभीषण ने बोला कि यहाँ आने में तो आपको बहुत दिक्कत हुई, बहुत चिंता हुई होगी, बहुत मुश्किल आई होगी। तब हनुमान ने बहुत अच्छा जवाब दिया, कह हनुमंता विपति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजनन होई। जीवन में विपत्ति क्या है? क्योंकि जब तव सुमिरन भजन न होए, हे प्रभु जब भक्त भक्त है वो सर्व प्रकार से भगवान के साथ जुड़ा है और जब भगवान का संबंध छूट जाता है, स्मरण छूट जाता है, उनकी भक्ति छूट जाती है तो क्या होता है? कहां भी हनुमंत विपति प्रभु सोई, प्रभु का स्मरण से अलग होना वही जीवन में विपत्ति है। एक बार अपने अस्तित्व के आधार के साथ जुड़ाव हो गया और वो जुड़ाव टिक गया तो ये दुनिया की जो कोई परिस्थितियां है उनमें कोई सामर्थ्य ही नहीं है कि वो हमें दुखी कर सके। और इसलिए देखो समाज के स्तर पर, राष्ट्र के स्तर पर या अध्यात्म के स्तर पर जितने जितने महापुरुष हुए हैं सामान्य मानव से हजार गुना ज्यादा दुख और मुश्किलियां उनके जीवन में आई है। उनके चरित्र का हम अभ्यास करें तो स्पष्ट रूप से हम ये देख पाते हैं कि बहुत मुश्किलियां उनके जीवन में आए। मुश्किलियां आती है, ज्यादा आती है, किंतु ये बात भी उनके जीवन में हमको देखने को मिलती है कि बड़ी से बड़ी मुश्किलियां भी उनको दुखी नहीं कर पाई है। देखा है ना आपको, सभी परिस्थिति में वो तो स्वस्थ ही रहे हैं। क्यों? क्योंकि कोई राष्ट्र भक्त हुए हैं मानो कि, तो राष्ट्र को ही प्रभु का स्वरूप मानते हैं और राष्ट्र को ही चैतन्य रूप से, एक पूर्ण रूप से ये सृष्टि ईश्वर मानते हैं। तो उनके लिए जब उनको अपना पूर्ण जीवन फना करना है, न्यौछावर करना है, तो उनको कोई प्रकार का भय नहीं रहता। जैसे एक भगवत भक्त को भगवान में निष्ठा है, वैसे ही एक राष्ट्र भक्त को राष्ट्र के लिए शहीद होने में भी इतनी ही निष्ठा होती है। कोई परोपकार करता है गरीबों के प्रति, किसी के प्रति कोई अच्छी भावना से दान करता है, उनके हृदय में भी एक ईश्वर को देखता है। तो जैसे कोई अर्चक पुजारी भक्त भगवान की पूजा करता है, वैसे ही उनके हृदय में ईश्वर को देख के उनकी सेवा करने वाला वैसा ही फल प्राप्त कर लेता है। और इसीलिए उनके जीवन में चाहे कितनी भी मुश्किलियां आ जाए किंतु वो मुश्किलियां उनको दुखी नहीं कर पाती। और यही अस्तित्व का आधार है जिनके साथ हमें जुड़ना है। और इसीलिए ये ईशावास्य उपनिषद जो है इनका प्रधान विषय ये है कि हमारे मूल अस्तित्व का हमें परिचय कराना। और एक बार हम हमारे अस्तित्व के साथ जुड़ गए तो क्या चमत्कार होगा। एग्जिस्टेंस वॉन्ट्स टू मेक अवर लाइफ फेस्टिवल। बाद में हमारा पूरा जीवन फेस्टिवल मानो उत्सव बन जाएगा। आपको बनाना है जीवन को उत्सव की भांति जीना है। उत्सव नाम क्यों? उर्ध्वः सवः यस्मात् इति उत्सवः। सवः नाम आनंदः। हमारा आनंद प्रतिक्षीण उर्ध्व ही उर्ध्व होता जाए, उनको बोलते हैं उत्सव। तो यही उत्सव है कि हमारे जीवन को कैसे उत्सव बनाना। और जिन्होंने ये अस्तित्व के आधार के साथ अपना व्यक्तित्व जोड़ दिया तो उनका पूरा जीवन उत्सव बन गया। तो वैसा ही उत्सव में ही हमारा पूर्ण जीवन बने, उसके लिए ये उपनिषद का तो प्रारंभ करते ही करना ही है। सोचते थे आज कर देना है, किंतु सोचा कि थोड़ी पहले क्लैरिटी होती रहे कि क्यों ये सब है तो ये आगे का, क्योंकि ये जो वैदिक ज्ञान है ये इतना तरल है और गहन है। नियम तो ऐसा है कि पहले गीता, भागवत, श्रुति, स्मृति ये सब ग्रंथ पढ़ लेना है और सबके अंत में ये उपनिषद का प्रारंभ होता है। नियम ऐसा है कि सबके लास्ट में। क्यों? क्योंकि बहुत रहस्यमयी जो विद्या है ये उपनिषद में है और बहुत अल्प शब्दों में सार रूप में कही जाती है, और इसीलिए सिद्धि ग्रहण करना ये भी थोड़ा कठिन प्रतीत होता है। तो इसलिए थोड़ी ये पूर्व भूमिका, जैसे हम दृढ़ रहेंगे तो कम से कम हमारे जीवन में यह समझने में हमें बहुत सुगमता और सरलता रहेगी, और इसीलिए ये थोड़ी पूर्व भूमिका के रूप में अस्तित्व का उत्सव उपनिषद। तो ये अस्तित्व क्या है, अस्तित्व का आधार क्या है, उनसे जुड़ाव किस प्रकार का है, और जुड़ाव के बाद हमारा जीवन किस प्रकार से उत्सवमय हम बना सकते हैं, और ये सब करने के लिए हमें कौन सा ज्ञान जरूरी है, यही जिज्ञासा के साथ हम ये ईशावासी उपनिषद उनकी शरण में आए हैं। तो क्रमशः एक दिन छोड़ के सप्ताह में 3 बार, कल नहीं और परसों हम फिर से मिलेंगे और यही उपनिषद की चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। आज के लिए हम इतना ही करेंगे। अब आपके हृदय में कुछ जिज्ञासा है, प्रश्न है तो पूछे, थोड़ी देर प्रश्नोत्तर की चर्चा करेंगे और बाद में आगे बढ़ेंगे। हेलो, ओके, सब प्रश्न समाधान हो गए। तो हम अगले क्लास में परसों मिलेंगे। सबको भाव से जय स्वामीनारायण। आज YouTube में तो नहीं हो पाया है, किंतु ये वीडियो को YouTube में अपलोड कर देंगे, बराबर। जय स्वामीनारायण।